आलोच्य उपन्यासों का विश्लेषण पृष्ठ संख्या 190। पुनर्जागरण से उद्भूत सुधार आंदोलन, उन सुधार आंदोलनों के तहत नारी विमर्श के विविध आयाम, नारी शिक्षा के क्षितिजों के उद्भासित होने से नारी चेतना के व्यापक विस्तार, नारियों में निरंतर बढ़ती प्रबुद्धता तथा स्वतंत्रता की एषणा प्रवृत्ति अनेकानेक कारणों से नगरीय परिवेश की नारी के जीवन में हमें अनेक आयामी तथा कभी कभी अंतर्विरोधी परिणाम उपलब्ध हो रहे हैं। उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग इत्यादि विभिन्न वर्ग की नारियों के विभिन्न रूप, चरित्र, तेवर इत्यादि के यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ नारियों का एक विस्तृत बनता बिगड़ता सवरता संसार उड़ती ठाठे मारता हुआ दृष्टिगोचर होता है। इधर के नए लेखकों ने तथा लेखिकाओं ने स्त्री पुरुष के मिथुन संबंधों पर खुला दृष्टिपात किया है। उच्च वर्गीय स्त्रियों में जहाँ विलासिता और फैशन परस्ती दृष्टिगत होती है, वहाँ अन्य वर्ग की स्त्रियों में समाज में प्रवर्तित समस्याओं और विभीषिकाओं से जूझने का साहस और जीवट है। अनारो उपन्यास की अनारो, बसंती की बसंती, मुर्दा घर की मैना, पतझड़ की आवाजे की अनुभा, 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा, टेरा कोटा की मीति, डाक बंगला की ईरा, अंतराल की श्याम, बेघर की संजीवनी, नरक दर नरक की सीता गुप्ता, 1 इंच मुस्कान की रंजना, छाया मत छूना मन की वसुधा, छिन्न मस्ता की प्रिया आदि उपन्यासिक नायिकाओं का जुझारू रूप और जीवट न केवल पाठकों को आकर्षित व उत्तेजित करता है, बल्कि प्रगतिकामी विमर्श संपन्न पुरुष तथा नारी चेतना संपन्न स्त्रियों को प्रसन्न भी करते हैं और उनसे कुछ दिशा निर्देश भी प्राप्त करते हैं। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 191। आलोच्य सीमा क्षेत्र के उपन्यासों में कतिपय व्यक्तित्व संपन्न नारी पात्र दृष्टिगोचर होते हैं। रूढ़ी मुक्तता, स्वतंत्रता बोध, नारी के सत्व का बोध, व्यक्तित्व की पहचान और उसे स्थापित करने की ललक आदि ने उनके व्यक्तित्व को अधिक देदीप्यमान तथा ऊर्जस्वल बनाया है। यहाँ नारियाँ सचमुच आधुनिक दृष्टिकोण को लेकर चली हैं। उनकी आधुनिकता ऊपर से ओढ़ी हुई सुविधा भोगी आधुनिकता नहीं है। कहीं कहीं आधुनिकता तथा स्वतंत्र विचारों की कीमत भी चुकाई है। इसके कारण कहीं कहीं उनके दाम्पत्य जीवन पर भी खरोचें आई हैं और कहीं कहीं चेतना के स्तर पर लहूलुहान भी वे हुई हैं। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास की नीलिमा, सुषमा श्रीवास्तव, आपका बंटी की शकुन, मुझे जान चाहिए कि वर्षा वशिष्ठ तथा दिव्या कात्याल, रुकोगी नहीं राधिका की राधिका, टेरा कोटा की मीति, तत्सम की वसुधा, वे दिन की रायना, चितकोबरा की मनु, उसके हिस्से की धूप की मनीषा, टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष की चरित्रा, सीढ़िया मनीषी, कृष्णकली की कली, शमशान चंपा की चंपा, 14 फेरे की अहल्या, आकाश कितना अनंत है कि मिस गीता पॉल, चंद औरतों का शहर की चारुलता तांबेकर आदि नारियां इस कोटि में आ सकती हैं। पैराग्राफ चेंज, नगरीय परिवेश की शिक्षित मध्यवर्गीय स्त्रियों में आर्थिक पारिवारिक सामाजिक संघर्ष से जूझने वाली स्त्रियों में 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा, पतझड़ की आवाजे की अनुभा, रेत की मछली की कुंतल, डाक बंगला की ईरा, 1 इंच मुस्कान की अमला, बेघर की संजीवनी, ढहती दीवारों की माधुरी उर्फ सुप्रिया, नावे की मालती, बढ़ता हुआ आदमी की सुनंदा, छाया मत छूना मन की वसुधा, उस तक की अंजू, प्रिया की सौदामिनी आदि नारियों को ले सकते हैं। ये नारियाँ अपने घर परिवार के लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं तथा अपने चरित्र की बलि चढ़ाती रही हैं। आर्थिक दृष्टया आत्मनिर्भर होने के लिए वे संघर्ष करती हैं, क्योंकि स्त्री को पराधीन और परवश बनाने वाले जो अनेक कारण हैं उनमें उनकी आर्थिक पर निर्भरता भी है। अतः लेलिन ने आर्थिक परतंत्रता को ही स्त्रीहीनता का कारण मानते हुए अपना अभिमत प्रकट किया था कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जब तक आर्थिक क्षेत्र में स्त्री को पुरुष के समान अवसर प्राप्त नहीं मिलते तब तक वह न स्वतंत्र हो सकती है और न पुरुष के समान, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सोशल साइंटिस्ट, अंक 4-5, नवंबर दिसंबर 1975, पृष्ठ संख्या 80, पैराग्राफ चेंज पृष्ठ संख्या 192। आलोच्यकाल सीमा के नगरीय उपन्यासों में नारी पात्रों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि पूर्ववर्ती औपन्यासिक नारी पात्रों की तुलना में उनमें रूढ़िमुक्तता की प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगत होती है। यह रूढ़िमुक्तता सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की पाई जाती है। 55 खंभे लाल दीवारी की सुषमा, टेरा कोटा की मीति, पतझड़ की आवाज़ें की अनुभा आदि नारियों ने अपने पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के लिए परंपरागत रूढ़ियों से उन्मुक्त होते हुए बेटी होते हुए भी बेटे की भूमिका को निभाया है और इस प्रकार यह पुराना ख्याल कि बेटी बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकती वह चकनाचूर हुआ है। पहले लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, परंतु अब इस नए वैचारिक परिप्रेक्ष्य में समझदार माँ बाप पुत्रियों को सुशिक्षित करने की दिशा में अग्रसरित हो रहे हैं। उक्त उपन्यास की नायिकाओं ने अपनी पारिवारिक प्रतिबद्धता से अपने चरित्र को एक विशिष्ट गरिमा प्रदान की है, यद्यपि इसमें उन्हें व्यक्तिगत यंत्रणाओं और पीड़ाओं से गुजरना भी पड़ा है, परंतु उससे उनका मानवीय और इंसानी माध्य में इजाफा ही हुआ है। दूसरी ओर रूढ़ी मुक्तता के कुछ नकारात्मक पहलू भी आए हैं, जिनको हम चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, रेखा, टूटता हुआ इंद्रधनुष इत्यादि उपन्यासों में लक्षित कर सकते हैं। उक्त उपन्यास की नायिकाओं ने यौन स्वतंत्रता की जेहाद छेड़ते हुए विवाहेतर संबंधों में यौन तृप्ति को तलाशने का प्रयत्न किया है। यहाँ कोई यह तर्क दे सकता है कि पुरुष यदि पत्नी के अतिरिक्त अन्य अनेक स्त्रियों से संबंध रखता है तो स्त्री क्यों नहीं रख सकती। यहाँ बुनियादी सवाल यह खड़ा होता है कि नारी चेतना का असली अर्थ क्या है। नारी शोषित रही है, अतः उसकी जेहाद शोषण के खिलाफ होनी चाहिए, हर गलत मसले के लिए होनी चाहिए, परंतु नारी चेतना का यह अर्थ तो कतई नहीं होता कि पुरुष जिन हथकंडों का प्रयोग करता रहा है नारी भी उनमें लिप्त हो। पुरुष में यदि बुराई थी तो नारियों में भी वे बुराइयां होनी चाहिए, यह तर्क नहीं कुतर्क होगा। यौन मुक्ति के विचार ने यूरोप अमेरिका के समाज में भी अनेक विभिषिकाएं उत्पन्न की हैं, अतः इस विषय में हमें सावधान होना चाहिए, अन्यथा विवाह, परिवार तथा समाज जैसी संस्थाएं बिखर जाएंगी और मनुष्य पुनः असभ्यता की ओर अग्रसर होगा। स्त्री पुरुष गैर बराबरी अनुचित है, स्त्रियों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उन्हें गरिमा और गौरव प्रदान होना चाहिए, परंतु दोनों में जो जैविक अंतर है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकृति ने सृजन का अधिकार स्त्री को दिया है, पुरुष उसमें सहायक है, परंतु बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तो स्त्री ही रखती है, अतः उस बच्चे के प्रति उसका जो ममत्व, प्रेम और वात्सल्य होगा उसका दशांश भी पुरुष में नहीं होगा, अतः उसका दायित्व भी दोहरा हो जाता है। पिता की दुष्चरित्रता का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता है, परंतु माँ की दुष्चरित्रता का प्रभाव उसे अमानुष और असाधारण बना देता है। यौन दृष्टया स्त्रियों का स्वयं विहार परिवार और उस परिवार में पलने वाले बच्चों के लिए घातक है। एक आंगल लेखक की बहुत पहले पढ़ी हुई उक्ति स्मरण में कौंध रही है कि पुरुष का स्वेच्छाचार घर से बाहर थूकने के बराबर है और स्त्री का स्वेच्छाचार बाहर से घर में थूकने के बराबर है। उक्त उपन्यासों में उनकी नायिकाओं से यौन स्वेच्छाचार के दुष्परिणाम नहीं बताए गए हैं, पृष्ठ संख्या 193, परंतु आगे चलकर बाल बच्चेदार होने पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसे इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। वस्तुतः पति पत्नी के संबंधों में पारदर्शिता होनी चाहिए। पति पत्नी जीवन साथी होते हैं, उनमें मैत्री और सख्यता होनी चाहिए, और जहाँ मैत्री और सख्यता होगी वहाँ छल, प्रपंच और झूठ का स्थान नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। भगवती चरण वर्मा कृत, रेखा और कांता सिन्हा कृत सूखी नदी का पुल, यह दोनों उपन्यास अनमेल विवाह की समस्या को नए ढंग से उकेरते हैं। रेखा की 20 वर्षीय रेखा भारद्वाज 53 वर्षीय प्रोफेसर प्रभाकर पर अनुरक्त हो जाती है और माँ बाप तथा अभिभावकों के विरोध के बावजूद विवाह सूत्र से बन जाती है, परंतु उसकी यौन अभुक्ति उसे स्वच्छंद यौनाचार के अंधेरे की ओर ले जाती है। प्रोफेसर के उपरांत उसके जीवन में 5 पुरुष आते हैं, फिर भी वह निरंतर तड़पती ही रहती है। दूसरी तरफ कांता सिन्हा कृत सूखी नदी का पुल की तारा राय साहब के व्यक्तित्व से अभिभूत हो जाती है। राय साहब अपनी बीमार पत्नी सत्या को दिखाने के लिए अमृतसर आए थे, तभी तारा से उनकी भेंट हुई थी। राय साहब के व्यक्तित्व से अभिभूत तारा कोर्ट मैरिज कर लेती है, परंतु यहाँ राय साहब के भरे पूरे परिवार के कारण लेखिका ने उसकी परिणति दूसरे प्रकार की बताई है। राय साहब को 3 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थीं। बाद में तारा से भी एक पुत्र होता है। अतः रेखा जैसी यौन अभुक्ति की स्थिति यहाँ नहीं है, परंतु यहाँ भी बाद में डॉक्टर बाली से भेंट होने पर तारा को यह एहसास गहराने लगता है कि वह जिस परिवार को बचाने के लिए पुल का काम कर रही है वह नदी ही अब सूख गई है। पुल की आवश्यकता तो बहती हुई जल विपुला सरिता को रहती है, पर उसके परिवार की नदी तो अब रेत सरिस हो गई है जो बिना पुल के भी पार हो सकती है। पैराग्राफ चेंज। नगरीय परिवेश के इन उपन्यासों में पुरुष छलना की शिकार और संतरस्त नारियां भी मिलती हैं, जिनमें डाक बंगला की ईरा, मालती जोशी कृत सहचारिणी की नीलम, नावे की मालती, रेत की मछली की कुंतल, बेघर की संजीवनी, अनदेखे अंजालपुर की निन्नी, 1 इंच मुस्कान की अमला, 2 लड़कियां की रंजना, दिनांत की आशा, ढहती दीवारी की सुप्रिया आदि को ले सकते हैं। पुरुषों ने अपने वाक जाल में फंसाकर इनका हर प्रकार से शोषण किया है। आर्थिक व्यवस्था, भौतिकता की चकाचौंध, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा इत्यादि के कारण कहीं कहीं स्त्रियों ने खुद पुरुषों को फांसने या फंसाने का कार्य भी किया है। नारी का यह रूप हमें विवेच्य उपन्यासों में उपलब्ध होता है। पतझड़ की आवाजें, 2 लड़कियां, डाक बंगला, नावे, छाया मत छूना मन, चिड़ियाघर, नगर पुत्र हंसता है, उस तक जैसे उपन्यासों में ऐसे अनेक नारी पात्र मिलते हैं। पतझड़ की आवाजें की उषा तो अयोग्य होते हुए भी बॉस की प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाती है, क्योंकि वह अत्यंत महत्वाकांक्षी और स्वार्थी महिला है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कैसे भी अनैतिक समझौतों के लिए सदैव तत्पर रहती है। उसके लिए अंतरात्मा या नैतिक मूल्यों का औचित्य जैसी कोई बात नहीं। पृष्ठ संख्या 194 इन्वर्टेड कॉमा ओपन। माल या पोजीशन हासिल होती हो तो वह किसी भी मर्द के साथ सोने के लिए प्रस्तुत रहती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ पतझड़ की आवाजें, निरुपमा सेवती। पृष्ठ संख्या 122। पैराग्राफ चेंज। चिड़ियाघर की मिसेज रिजवी भी उषा की कार्बन कॉपी है। नावे की मालती, 2 लड़कियां की रंजना, छाया मत छूना मन की वसुधा, डाक बंगला की ईरा जैसी महिलाओं के सामने बढ़ता हुआ आदमी की सुनंदा आती है। सुनंदा का सौतेला बाप 12 साल की अवस्था में ही उससे पैसा करवाता है। आर्थिक व्यवस्था तथा अपने अस्तित्व की रक्षा की समस्या भी रही है। पैराग्राफ चेंज। विवेच्य उपन्यासों में कुछ ऐसे नारी पात्र भी आए हैं जो अपनी प्रतिभा, शिक्षा तथा संघर्ष के बल पर ऊंचे पदों को प्राप्त करती हैं। टेराकोटा की मीति, 55 खंबे लाल दीवारे की सुषमा, अनदेखे अंजालपुल की निन्नी, अकेला पलास की तहमीना, सीढ़िया की मनीषा, तत्सम की वसुधा, टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष की चरित्रा, नरक दर नरक की सीता गुप्ता, मुझे चांद चाहिए की वर्षा वशिष्ठ तथा दिव्या कात्याल, अंधेरे बंद कमरे की नीलिमा, मुक्तिबोध की नीलिमा, आपका बंटी की शकुन इत्यादि महिलाओं को हम इस वर्ग में रख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। विवेच्य नगरीय परिवेश में उपन्यासों में अनमेल विवाह की समस्या एक दूसरे रूप में सामने आई है, जिसे हम विश्व स्तरीय पति की समस्या कह सकते हैं, जहां स्त्री सुशिक्षित, प्रतिभावान, शक्ति संपन्न तथा एक सीमा तक दबंग हो, परंतु उसे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप जीवन साथी न मिला हो। टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष की चरित्रा, उसकी पंचवटी की साध्वी, अकेला पलाश की तहमीना, मुक्तिबोध की नीलिमा इत्यादि को ले सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। हिंदी के अनेक उपन्यासों में पुरुषों की भ्रमर वृत्ति और भटकन के दर्शन होते हैं। विवेच्य काल के कुछ कतिपय उपन्यासों में हमें उसका विलोमी स्वरूप भी प्राप्त होता है। अभी तक पुरुष स्त्री को भोगता था, अब स्त्री ब्रैकेट में कहीं कहीं और कभी कभी उस स्थिति में आ गई है कि वह पुरुष को भोग रही है। वे दिन की रायना, उसके हिस्से की धूप की मनीषा, चितकोबरा की मनु, टूटता हुआ इंद्रधनुष की शोभना, टुकड़ों में बटा इंद्रधनुष की चरित्रा आदि नारियां यहाँ उल्लेखनीय रहेंगी। पैराग्राफ चेंज। मेहरुन्निसा परिवेश के उपन्यास आँखों की दहलीज में मुस्लिम समाज में नारियों की स्थिति को लेकर एक दूसरा ही चित्र मिलता है। तालिया समीम से विवाह करती है, परंतु अनेक प्रयत्नों के बाद भी उसे बच्चा नहीं होता। फलतः स्वयं उसकी माँ ऐसी व्यवस्था करती है जिसमें तालिया जावेद नामक एक अन्य युवक के संपर्क में आती है। दोनों में संबंध भी स्थापित होता है। तालिया के लिए यह एक आकस्मिक घटना थी। उसे नहीं मालूम था कि इसके पीछे एक पूर्व नियोजित योजना भी थी। अपराध बोध से ग्रस्त तालिया आत्महत्या कर लेती है, परंतु उसके पूर्व वह अपनी सखी जमीला को समीम से विवाह के लिए राजी कर लेती है। परंतु उपन्यास में मुस्लिम समाज में बांझ स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति है, उसको उकेरा गया है। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ संख्या 195। आँखों की दहलीज में जहाँ मुस्लिम समाज को लिया गया है, वहाँ उसका घर उपन्यास में ईसाई परिवेश को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में एल्मा के शरीर का सौदा स्वयं उसका भाई करता है। त्यागपत्र की मृणाल की भांति एल्मा भी एक आत्मपीड़क चरित्र है। उसका भाई अहूजा नामक एक व्यापारी से उसके जिस्म का सौदा करता है। अपने घर परिवार के लिए एल्मा तिल तिल जलती हुई अपने सर्वस्व की आहुति दे देती है। इन्वर्टेड कॉमा पेन। वह अपने को कितना सताएगी, कितना भुलाने की कोशिश करेगी, क्या ईसु के सलीब पर लटकाए जाने पर मदर मरियम इतना दुखी रही होंगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ उसका घर, मेहरुन्निसा परवेश, पृष्ठ संख्या 72। एल्मा एक पति परित्यक्तता नारी है और उसका भाई उसके शरीर को भुनाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। अहूजा ने एल्मा के उपरांत अनेक प्रेमिकाओं को पाल रखा है। उसका घर उपन्यास में लेखिका प्रस्तावित करती हैं कि कहीं कुछ बदला नहीं। पहले राजा नवाब और सामंत सरदार नारी का नैतिक शोषण करते थे, अब इस वाणिक युग में सेठ, व्यापारी और उद्योगपति अपने पैसों के बल पर यह जुल्म ढाते हैं। पैराग्राफ चेंज। इधर काला जल तथा आधा गांव जैसे उपन्यासों में रूढ़िचुस्त मुस्लिम परिवारों में नारी जीवन में जो बदलाव आ रहा है, उसके भी कुछ संकेत मिलते हैं। आधा गांव के अब्बू मियाँ की लड़की सईदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती है और पढ़ाई के खत्म होने पर नौकरी भी करती है। सईदा की नौकरी को लेकर अब्बू मियाँ शुरू शुरू में झुंझलाते हैं, परंतु जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात उनकी सारी हेकड़ी खत्म हो जाती है और तब सईदा की वह नौकरी उनके लिए आशीर्वाद बन जाती है। ठीक उसी प्रकार काला जल के रसूल मुंशी के यहाँ बड़ी जगमग रहती है। त्योहार के दिनों में उनके यहाँ कतार से मोमबत्तियाँ जलने लगती हैं और उनके घर की छोटी बच्चियाँ नायलॉन की फ्रॉक ओढ़नी में मोहल्ले भर में धमा चौकड़ी मचाती रहती हैं, क्योंकि उनकी बड़ी लड़की इधर पर्दा छोड़कर ग्राम सेविका की नौकरी करने लगी है और प्रायः जीव में इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ रही है। पैराग्राफ चीन। वस्तुतः प्रत्येक स्त्री पुरुष में काम की भावना तो रहती ही है, यह सर्वथा प्राकृतिक तथ्य है। अवस्था होने पर यह भावना का उत्पन्न होना साधारण ही समझा जाएगा, बल्कि ऐसा न हो तो चिंता की बात हो सकती है। इस दृष्टि से प्रत्येक वयस्क नारी में यह भावना उपलब्ध होती है, परंतु किन्हीं कारणों से जब यह उपस्थित नहीं होती तो ऐसी विपुल वासनावती स्त्री को निम्फो कहा जाता है। किसी भी स्त्री के निम्फो होने में मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला, यदि उसका लालन पालन ऐसे माहौल में हुआ हो जहां स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर गंदी घिनौनी कमजात हल्की मजाके चलती रहती हो। दूसरा, यदि किसी स्त्री की सामान्य वासना सामान्य एवं प्राकृतिक ढंग से संतृप्त नहीं होती, तब वह कामशुदा से पीड़ित रहने के कारण एक प्रकार से सेक्सेनियाक हो जाती है। विवेच्य उपन्यासों में ऐसे कुछ विपुल वासनावती नारी चरित्र मिलते हैं, जिसमें सेठानी नर्मदा बेन ब्रैकेट में किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई कौमा कल्याणी ब्रैकेट में मछली मरी हुई कौमा रेखा ब्रैकेट में रेखा मिस जायसवाल ब्रैकेट में बैसाखियों वाली इमारत मित्रों ब्रैकेट में मित्रों मरजानी गोरी ब्रैकेट में इमरतिया आदि को परिगणित कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 196। आलोच्य उपन्यासों में कुछ ऐसे नारी पात्र भी मिलते हैं जिनकी यौन भावना किन्हीं कारणों से संतुष्ट रहती है और जिसके रहते उसके जीवन में एक भटकन की स्थिति का निर्माण होता है। अनदेखे अंजाल पुल की निन्नी रेखा की रेखा वेदिन की रायना बैसाखियों वाली इमारत की मिस जायसवाल आदि नारियों को हम इस कोटि में रख सकते हैं। जिस प्रकार कुछ पुरुषों में समलैंगिकता की विकृति पाई जाती है, उसी प्रकार कई बार कुछ स्त्रियों में भी यह भावना पाई जाती है। विवेच्य उपन्यासों में मरी हुई मछली की सीरी प्रिया सफ़ेद मेमने की बन्नो मुझे चांद चाहिए की वर्षा वशिष्ठ तथा दिव्या कात्याल आदि नारियों में कहीं कहीं यह लेस्बियनिज्म की प्रवृत्ति मिलती है। किन्हीं कारणों से यदि कोई स्त्री अविवाहित रह जाती है, परंतु यदि उसमें विवाह की प्रबल इच्छा होती है, तो ऐसी स्त्रियों का मानस विकृत हो जाता है और उनको काल्पनिक गॉसिप कथाओं में आनंद आने लगता है। 55 खंभे लाल दीवारे की संस्कृत की व्याख्याता मिस शास्त्री उसका एक अच्छा उदाहरण है। अनदेखे अनजान पुल की निन्नी भी इस मानसिक विकृति का शिकार हो सकती थी, परंतु उसने अपनी बुद्धि प्रतिभा के द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति कर ली। IAS करके भारत सरकार के एक उच्च स्थान पर बैठ जाने के कारण उसकी दंभित भावनाओं का उदात्तीकरण हो गया। पैराग्राफ चेंज। शिक्षा तथा नारी चेतना के कारण जहां नगरों के एक विशिष्ट वर्ग की स्त्रियों में स्तरीयता पाई जाती है, वहां स्त्री पुरुष के अहम की टकराहट के कारण उनके दाम्पत्य जीवन भी खंडित हुए हैं। एक इंच मुस्कान की शकुन और अमला आपका बंटी की शकुन अंधेरे बंद कमरे की नीलिमा अंतराल की श्यामा आदि नारी चरित्रों को यहाँ लिया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। आकाश कितना अनंत है बैक ब्रैकेट में शैलेश मटियानी उपन्यास में नैनीताल अल्मोड़ा जैसे पहाड़ के छोटे छोटे नगरों में स्कूल कॉलेज की अध्यापिकाओं में स्थानीय स्तर पर चलने वाले प्रेम संबंधों की गॉसिप कथाओं को भी उकेरा गया है। प्रस्तुत उपन्यास में मिसेज मिठाणी का चरित्र क्लासिकल बन पाया है। ऐसे चरित्र एक लंबे अरसे तक पाठक की स्मृति को आलोड़ित विलोड़ित करते रहते हैं। शैलेश मटियानी के ही उपन्यास चंद औरतों का शहर में मिस चारुलता तांबेकर मिस गॉन्स मिस कनिष्ठा मिसेस दुबे मिसेस त्रिपाठी मिसेस भार्या बेगम नसरीन आदि नारी चरित्र हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पृष्ठ संख्या 197। मिस चारुलता तांबेकर बाद में मिसेस बलवीर हो जाती हैं। वह राय बहादुर भगत राम की पुत्री हैं। भगत राम जी अनुसूचित जाति के हैं। इधर सरकार की आरक्षण नीतियों के कारण पिछड़ी जाति के कुछ लोगों में जो उत्कर्ष की स्थिति मिलती है, भगत राम जी उसके उदाहरण है। मिसेस बलवीर बाबू जगजीवन राय की पुत्री मीरा कुमार के प्रतीक समान है। पैराग्राफ चेंज। नगरीय परिवेश के उपन्यासों को विश्लेषित करने पर एक तथ्य जो सामने आता है वह यह है कि जीवन के संघर्षों से जूझने का ढंग जो मध्य वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की नारियों में पाया जाता है, वह उच्च वर्गीय नारियों में उपलब्ध नहीं होता। अनारो उपन्यास की अनारो, मुर्दा घर की मैना, 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा, टेराकोटा की मीति, पतझड़ की आवाजे की अनुभा, अंतराल की श्यामा, बेघर की संजीवनी आदि को इस संदर्भ में लक्षित किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। यद्यपि आगामी अध्याय में कामकाजी महिलाओं पर विस्तार से विचार हो रहा है, तथापि यहाँ संक्षेप में संकेत भर देने का उपक्रम है कि आलोच्य उपन्यासों में कुछ ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो उच्च पदों को हासिल कर सकी हैं। टेरा कोटा की मीति पहले कलेक्टर और बाद में कमिश्नर तक हो जाती है। टुकड़ों में बटा हुआ इंद्रधनुष की चरित्रा भी अपनी प्रतिभा के बल पर स्टेटस को हासिल करती है। अनदेखे अंजाल पुल की निन्नी भी आईएएस करके भारत सरकार प्रशासनिक सेवा में उच्चतम स्थान को प्राप्त कर लेती है। अंधेरे बंद कमरे की नीलिमा नृत्य के क्षेत्र में अपना नाम उजागर करती है। तो मुझे चांद चाहिए कि वर्षा वशिष्ठ शाहजहांपुर कॉलेज में अभिनीत सौम्य मुद्रा से प्रारंभ कर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ते हुए बॉलीवुड तथा हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री बन जाती है। 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा, तत्सम की वसुधा, अंतराल की श्यामा, मुझे चांद चाहिए कि दिव्या कात्याल, बैसाखियों वाली इमारतें की मिस जायसवाल, आपका बंटी की शकुन, उसके हिस्से की धूप की मनीषा आदि महिलाएं कॉलेज में प्राध्यापिकाओं के पदों पर कार्यरत हैं। सीढ़िया की डॉक्टर मनीषी और डॉक्टर लीना, शमशान चंपा की चंपा, कृष्णकली की डॉक्टर प्रेद्रिक, टेराकोटा की उमा कालिंदी की कालिंदी आदि महिलाएं अपनी प्रतिभा के बल पर डॉक्टरी तक पढ़ पाई हैं। यहाँ एक तथ्य की ओर हमारा ध्यान गए बिना नहीं रहता कि हिंदी के विवेच्य उपन्यासों में हमें सामान्य धरातल वाली प्राध्यापिकाएं तो मिल जाती हैं, परंतु डॉक्टर सावित्री सिंह तथा डॉक्टर निर्मला जैन जैसी विदुषियों के दर्शन नहीं होते। इसे हिंदी उपन्यास की एक कमी ही समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि नगरीय परिवेश के उपन्यासों में नारी के कई रूप हमें मिलते हैं। जहाँ नारियों का कई दृष्टियों से शोषण हुआ है, वहाँ कहीं कहीं एक शक्ति के रूप में भी वे उभर कर आई हैं। छायावादी भावुकता से नारी कुछ कुछ मुक्त हो रही है और संघर्षों की तपीस ने उसके व्यक्तित्व के कुंदन को अधिक निखारा है। उनकी विवस्था में भी कहीं कहीं हमें नारी की गरिमा के दर्शन होते हैं। संक्षेप में अध्याय के समग्र अवलोकन पर हम निम्नलिखित निष्कर्षों तक सहजतया पहुँच सकते हैं।